अथ शब्दानुशासनम का अर्थ हुआ कि शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। वेदितव्यम माने जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? तो अधिकृत जानना चाहिए। अधिकृत माने प्रारंभ जानना चाहिए। किसका प्रारंभ जानना चाहिए? तो शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम माने शब्दानुशासन नाम का जो शास्त्र है उसका प्रारंभ यहाँ से जानना चाहिए। अब यहाँ जो शब्दानुशासन नाम शास्त्रम कहा कि माने शब्दानुशासन नाम का जो शास्त्र या शास्त्र कौन है? तो व्याकरण शास्त्र है। तो व्याकरण शास्त्र का आरंभ जो है यहाँ से जानना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि शब्दानुशासन जो है यह व्याकरण शास्त्र का पर्यायवाची शब्द है। तो इस तरह से अथ शब्दानुशासनम के द्वारा पतंजलि ने ये बताया कि यहाँ से शब्दानुशासन नाम के शास्त्र का प्रारंभ हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि शब्दानुशासनम का अर्थ आप जानते हैं कि शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम। शब्दानाम अनुशासनम माने शब्द कर्मकम अनुशासनम, माने शब्द कर्मक जो अनुशासन है उसे हम शब्दानुशासन कहते हैं। तो जिसका अनुशासन हो ना उसे हम कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर शब्दानुशासन में किसका अनुशासन है? तो शब्द का अनुशासन है, इसलिए हम शब्द को कर्म कहते हैं। तो शब्दानुशासन में शब्द कर्म है। तो यहाँ शब्दानुशासन का जो अर्थ किया आपने कि शब्दों का अनुशासन, जैसे मैं आपको पूछूं कि शब्दानुशासन में किसका अनुशासन है तो आप क्या कहेंगे कि शब्दानाम माने शब्दों का अनुशासन है। उसी तरह से भाष्यकार पूछते हैं कि शब्दानुशासन नाम का शास्त्र का प्रारंभ यहाँ से हो रहा है तो माने केशाम शब्दानाम माने किन शब्दों का जो है यहाँ पर अनुशासन किया जाएगा। तो कहते हैं लौकिकानाम वैदिकानाम च। संस्कृत भाषा में दो तरह के शब्द हैं, लौकिक संस्कृत शब्द और वैदिक संस्कृत शब्द। तो यह जो शब्दानुशासन है इस शब्दानुशासन में दोनों टाइप के शब्दों का अनुशासन बताया जाएगा, लौकिक शब्द का भी और वैदिक शब्द का भी। लौकिक मतलब लोके प्रसिद्धानाम लौकिकानाम, और वैदिकानाम मतलब वेदे प्रसिद्धानाम वैदिकानाम। तो लोके प्रसिद्धानाम शब्दानाम अपि अनुशासनम अत्र वर्तते, अपि च वैदिक प्रसिद्धानाम वेद प्रसिद्धानाम शब्दानाम अपि अत्र अनुशासनम वर्तते। तो लोक में प्रसिद्ध जो शब्द है उसका भी यहाँ अनुशासन है, और वेद में प्रसिद्ध जो शब्द है उसका भी यहाँ पर अनुशासन है। तो ये प्रश्न की भाष्यकार की शैली है कि ये प्रश्न करते हैं स्वयं, और स्वयं उस प्रश्न का उत्तर भी करते हैं, इसलिए इनकी शैली को सब लोग जो है ना कि प्रशंसा करते हैं कि इनकी बड़ी अच्छी शैली है। तो पहले तो ये कहा कि अथ शब्दानुशासनम कि यहाँ से शब्दानुशासन का प्रारंभ हो रहा है। फिर कहा कि शब्दानुशासन में अनुशासन अर्थ है तो किसका अनुशासन करना है, केशाम शब्दानाम प्रश्न किया। फिर उत्तर देते हैं लौकिकानाम वैदिकानाम च, क्योंकि लौकिक शब्दों का भी अनुशासन है यहाँ पर और वैदिक शब्दों का भी अनुशासन है यहाँ पर। फिर हम स्वयं बताते हैं, परिचय देते हैं कि लौकिक शब्द कैसा होता है और वैदिक शब्द कैसा होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लोक में जो प्रसिद्ध शब्द है वह लौकिक शब्द है, और वेद में जो प्रसिद्ध शब्द है वह वैदिक शब्द है। ये तो एक सामान्य सी बात हुई, लेकिन एक विशेष भेद समझिए दोनों में, लौकिक शब्द में और वैदिक शब्द में। लौकिक शब्द में क्या है ना कि शब्दों का कोई क्रम निर्धारित नहीं होता है कि इस शब्द के बाद यही शब्द होना चाहिए, इस शब्द के बाद यही शब्द होना चाहिए, इस तरह का कोई क्रम निर्धारण नहीं है। लेकिन वैदिक शब्दों में बिल्कुल क्रम फिक्स है, उसमें आर्डर जो है ना बताया गया कि इसी आर्डर में आपको शब्दों को रखना है। गणानां त्वा गणपति गुंग हवामहे, ये जो गणानाम है त्वा है, गणपति गणपति गुंग है, हवामहे है, इसको जिस क्रम से बोला गया इसी क्रम से इसको कहा जाएगा। इसको जो है ना इसमें क्रम भंग नहीं होगा, इसको आगे पीछे आप नहीं कर सकते। लेकिन लौकिक शब्द में ऐसा नहीं है, लौकिक शब्द में आप राम ग्रामम गच्छति भी कह सकते हैं, ग्रामम राम गच्छति भी कह सकते हैं, गच्छति ग्रामम राम भी कह सकते हैं, उसमें क्रम जो है ना उल्टा पुल्टा कर सकते हैं आप। पशु का भी नाम ले सकते हैं, उसके बाद जो है मनुष्य का भी ले सकते हैं, उसके बाद पक्षी का भी ले सकते हैं, तो इस तरह से उसमें कोई क्रम नहीं होता। तो ये जो विशेष भेद है कि लौकिक शब्दों में कोई क्रम निर्धारण नहीं है शब्दों का, लेकिन वैदिक शब्दों में क्रम का निर्धारण है, इसको ध्यान में रखते हुए ही भाष्यकार ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है लौकिक शब्द का और वैदिक शब्द का, वो देखिए। कहा कि लौकिक शब्द और वैदिक शब्द दोनों का यहाँ अनुशासन है, तो लौकिक शब्द कौन है तो बताते हैं। लौकिका तावत माने लौकिक शब्द हैं, जैसे गौह, अश्वः, पुरुषः, हस्ति, शकुनी, मृगः, ब्राह्मणः इति, इति माने इत्यादि। इस तरह से जो ये सारे शब्द हैं ये लौकिक शब्द हैं, क्योंकि लोक में जो है ना कोई क्रम फिक्स नहीं रहता। देखिए पहले गौह बताया, गौह माने यहाँ बैल, और अश्वः माने घोड़ा, फिर पुरुषः माने पुरुष, हस्ति माने हाथी, शकुनी माने पक्षी, मृगः माने हिरण, और ब्राह्मणः माने ब्राह्मण व्यक्ति। इस तरह से देखा आपने, माने गाय, गाय है, उसके बाद अश्व है, उसके बाद पुरुष है, पुरुष के बाद हस्ती है, हस्ती के बाद शकुनी है, शकुनी के बाद मृग है, मृग के बाद ब्राह्मण है। कोई क्रम इसमें दिख रहा है आपको? कभी भी कुछ भी कहा जा सकता है, कभी भी कुछ भी बताया जा सकता है। तो इस तरह से लौकिक शब्दों का उदाहरण दिया, माने इन शब्दों का भी जो है अनुशासन यहाँ किया जाएगा। और इसी तरह से वैदिका खल्वपि, और वैदिक शब्द कौन होते हैं, तो यहाँ देखिए कि जैसे वेद में मंत्र हैं जो शब्द का क्रम फिक्स है, उसी तरह से जो है ना यहाँ पर उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है, और चारों वेदों का से उदाहरण लिया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो चार वेद हैं, चारों वेदों का जो पहला मंत्र है और पहले मंत्र का जो पहला टुकड़ा है शब्द पाद कह लीजिए, उन पाद का जो है पादों का यहाँ पर उदाहरण में प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले अथर्ववेद का उदाहरण लेते हैं, तो अथर्ववेद की पंक्ति देते हैं मंत्र की, कि सन्नो देवी रविष्टये, ये जो है ना अथर्ववेद के पहले मंत्र का पहला भाग है, पहला जो है ना भाग है सन्नो देवी रविष्टये। फिर उसके बाद यजुर्वेद कहते हैं इसे तोर जेत्वा, फिर ऋग्वेद का लिया इन्होंने अग्निमीले पुरोहितम, और फिर अंत में सामवेद का लिया अग्न आया ही भीतया। तो पहले अथर्ववेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर ऋग्वेद है, और फिर सामवेद है। कहाँ पर? इसमें उदाहरण में। ऐसे तो जो है ना क्रम जो है उसका वेद का क्रम जो है यही होता, पहले ऋग्वेद कहा जाता है, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद कहा जाता है। लेकिन यहाँ भाष्यकार ने जो है ना थोड़ा सा क्रम पलट करके बताया है, इसीलिए लोग कहते हैं कि जैसे ब्राह्मण होते हैं, कोई ब्राह्मण यजुर्वेदी होते हैं, कोई ऋग्वेदी होते हैं, कोई अथर्ववेदी होते हैं, कोई सामवेदी ब्राह्मण होते हैं। तो चूंकि यहाँ भाष्यकार ने पहला जो उदाहरण दिया वो अथर्ववेद से उदाहरण दिया वैदिक शब्द का, इसलिए लोग कहते हैं कि शायद पतंजलि जो थे वो अथर्ववेदी ब्राह्मण थे, और अथर्ववेदी ब्राह्मण होने के कारण अपने वेद का उदाहरण उन्होंने सबसे पहले बताया। खैर वो जो भी हो, तो यहाँ जो है ना केवल तात्पर्य इतने में है कि वैदिक शब्द कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, तो उसको बताया कि अथर्ववेद में भी वैदिक शब्द हैं, यजुर्वेद में भी हैं, ऋग्वेद में भी हैं, सामवेद में भी हैं, और उदाहरण के तौर पर बता दिया कि सन्नो देवी रविष्टये अथर्ववेद में इस तरह के शब्द मिलते हैं, इसे तोर जेत्वा इस तरह के शब्द यजुर्वेद में मिलते हैं, अग्निमीले पुरोहितम इस तरह के शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं, और अग्न आया है बीतिया इस तरह के शब्द सामवेद में मिलते हैं, और इन्हीं सब वैदिक शब्दों का जो है यहाँ पर इस शास्त्र में अनुशासन किया जाएगा, माने असाधु शब्दों से अलग करके इन साधु शब्दों को बताया जाएगा। तो इस तरह से अभी तक जो है तीन बातें भाष्यकार ने की, एक तो पहले कहा कि यहाँ पर अब शब्दानुशासन नाम के शास्त्र का प्रारंभ हो रहा है, फिर कुछ कहा कि किन शब्दों का अनुशासन होगा, तो बताया लौकिक शब्दों का और वैदिक शब्दों का, फिर लौकिक शब्दों का उदाहरण प्रस्तुत किया गौरस्व पुरुषो हस्ति शकुनिर मृगो ब्राह्मण, और फिर वैदिक शब्दों का उदाहरण प्रस्तुत किया सन्नो देवी रविष्टये इसे तोर जेत्वा अग्निमीले पुरोहितम अग्न आया ही बीतया। अब ये जो अथ शब्दान शासन में जो तीन शब्द थे, अथ शब्द और अनुशासनम, उसमें हमने अथ के बारे में बताया, अनुशासनम के बारे में बताया, और शब्द शब्द के बारे में नहीं बताया, कहा कि वो हम भाष्य की पंक्ति के आधार पर ही उसको हम बताएंगे, तो उसका समय अब आ गया है। एक चीज और रह गई है जो मैं बता दूं, अथ शब्दान शास्त्र में जो अथ शब्द है ना, यह निपात है। आपने सुना होगा अव्यय, उपसर्ग, निपात, ये सब होते हैं ना। अपने यहाँ निपात संज्ञा होती है चादयो सत्व सूत्र से, और प्रादय, इन सूत्रों से जो है ना निपात संज्ञा होती है, और भी है। तो अथ शब्द जो है निपात है, और निपात शब्द जो होता है ना, माने जिसकी निपात संज्ञा हो उसको हम निपात शब्द कहते हैं। तो अथ शब्दान शासन में जो अथ शब्द है यह भी निपात शब्द है। निपात शब्द के बारे में ना दो तरह का शास्त्रार्थ होता है, मतलब कुछ शास्त्र वाले कहते हैं कि निपात वाचक होता है, और कुछ शास्त्र वाले कहते हैं कि निपात द्योतक होता है। तो इसमें हमारा क्या मानना है भैया, व्याकरण शास्त्र वालों का क्या मानना है? तो व्याकरण शास्त्र वालों का जो है ना अंतिम पक्ष यही है कि इसमें कोई आग्रह नहीं करना चाहिए कि निपात द्योतक ही होता है या निपात वाचक ही होता है। कुछ निपात जो है ना द्योतक भी होते हैं, कुछ निपात वाचक भी होते हैं, ये निष्कर्षात्मक बात है। ऐसे शास्त्रार्थ क्रम में जो है ये न्याय दर्शन वाले जो हैं वाचक पक्ष वाले हैं, और व्याकरण को ना द्योतक पक्ष वाला माना जाता है। अंततः निष्कर्ष निकलता वही है कि सारे शब्द वाचक नहीं होते, निपात सारे निपात द्योतक नहीं होते, कुछ निपातक भी कुछ वाचक भी होते हैं, कुछ द्योतक भी होते हैं। तो यहाँ जो अथ शब्दानुशासन में अथ शब्द को कहा गया कि अधिकारार्थ प्रयुज्यते, माने अधिकार अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। तो अधिकार का अर्थ मैंने बताया प्रारंभ, माने प्रारंभ अर्थ में प्रयोग किया गया है। यह जो प्रारंभ अर्थ है इसका द्योतक है अथ शब्द या वाचक है अथ शब्द, इस तरह से भी प्रश्न हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि अथ शब्द अधिकार अर्थस्य अथवा प्रारंभ अर्थस्य द्योतक, माने अथ शब्द जो है प्रारंभ अर्थ का द्योतक है। अब कहोगे कि गुरुजी आपने द्योतक वाचक किया, समझाया तो है ही नहीं कि द्योतक क्या होता है, वाचक क्या होता है। तो इसको समझ लीजिए, वाचक जो होता है ना वह स्वयं में रहने वाले अर्थ को बताता है, और द्योतक जो होता है उसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता, वह अपने साथ वाले जो शब्द हैं उसके अर्थ को बताता है। जैसे दीपक जो है उसमें घड़ा नहीं होता, दीपक जो है ना अपने पास में जो रखा हुआ घड़ा रहता है उस घड़े को दिखाता है, उस घड़े को प्रकाशित करता है। दीपक अपने में उसमें घट पट आदि जो है ना जो अर्थ हैं वो अर्थ दीपक के अर्थ नहीं है, बल्कि अपने बगल में जो दीपक घड़ा रखा रहता है या कुछ खाट रखी रहती है या कुर्सी रखी रहती है या बुक रखी रहती है, तो अपने बगल वाले को जो बताता है उसे द्योतक कहते हैं। बगल वाले के अर्थ को जो बताता है उसको द्योतक कहते हैं, जो स्वयं के अर्थ को बताता है उसे वाचक कहते हैं। यही है द्योतक और वाचक। तो यहाँ पर अगर दो नंबर में पूछे कि अर्थ शब्द जो है अधिकार अर्थ का द्योतक है कि वाचक है, तो आप उसको ना द्योतक के रूप में ही लिखना, तो फिर उसमें आपको अंक मिलेगा, क्योंकि ये विवादास्पद विषय है। चलो, तो इसके साथ साथ एक और चीज़ बता दूँ कि आप जानते हैं कि किसी भी ग्रंथ का आरम्भ जो होता है वो मंगल उसमें किया जाता है। तो भाष्य का जो आरंभ है वो अथ शब्दान शासनम से आरंभ है, तो इसमें मंगलाचरण तो है नहीं, जैसे सिद्धांत कौमुदी में मुनित्रयम नमस्कृत्य करके जो है ना मंगलाचरण किया गया, तो यहाँ पर मंगलाचरण कहाँ है? नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो अथ शब्द का प्रयोग किया गया ना यही इसी से मंगल होता है, क्योंकि कोषकार ने कहा है कि अथ शब्द का अर्थ मंगल भी होता है, माने मंगल के लिए भी होता है। तो कहे, तो अब यहाँ पर तुम पूछ सकते हो कि अरे अभी आपने बताया कि अथ शब्द का अर्थ अधिकार है माने प्रारंभ है, और अभी कह रहे हैं कि अथ शब्द का मंगल अर्थ है, ये दोनों कैसे होगा? तो होगा, हो सकता है। कैसे? तो मान लो कि किसी के लिए कोई दही ले जा रहा है, तो किसी के लिए दही ले जा रहा है, तो वहाँ पर दो अर्थ की सिद्धि हो सकती है। कोई अगर यात्रा करने जा रहा है तो उस दही को देख करके उस यात्री का मंगल भी होगा, और उस दही को खा करके किसी का पेट भी भरेगा। तो एक ही चीज के दो दो प्रयोजन होते हैं। इसी तरह से यहाँ अथ शब्दानुशासन में जो अथ शब्द है इससे दो प्रयोजन निकलते, एक मंगल भी हो जाता है और इसका आरंभ अर्थ का भी जो है बोध भी हो जाता है। तो यहाँ ये भी अगर पूछे कि महाभाष्य का मंगलाचरण किस शब्द से किया गया तो आप कह देंगे कि अथ शब्द से जो है मंगलाचरण किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये दो शब्द हैं ओम शब्द और अथ शब्द, तो ओम और अथ इन दोनों के द्वारा जो है ना मंगल किया जाता है, ठीक है। चलिए तो अब ये जो है शब्द किसको कहते हैं इसके ऊपर जो है ना हमें विचार करना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज का पाठ यहीं रख करके हम अगले पाठ में शब्द के बारे में समझेंगे, क्योंकि इसमें गंभीर विषय है ये, और इस विषय को आराम से हम अगले पाठ में पढ़ेंगे।